Hare Krishna, this class on Bhagavad Gita, chapter 2, slok number 36, given at AIIMS Hospital, New Delhi, on 14th February 2017 by myself, Prashant Mukunda Das.
Avachya Vadanascha Bahuna Vadishante Tavahitaha Nindat Sattvam Samarthya Tato Dukhataram Nukim Avacha Vadanascha Bahuna Vadishante Tavahitaha Nindatattau Samarthyam Tato Duktaram Nukim.
साथ में दोहराएंगे. तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे. तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है. तात्पर्य बाइस डिवाइन गर्ल श्रील प्रभुपाद. श्रील प्रभुपाद की तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस दया भाव को अनयोचित बताया था. अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथा कथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है. तो ये जो श्लोक है, इससे पहले भी हमने 5 श्लोकों में चर्चा करी. 30वें श्लोक से शुरू हुआ था और अभी 36वां श्लोक है. तो 30 श्लोक से 36वें श्लोक तक भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम युद्ध से भाग जाओगे तो उसमें कई कारण उत्पन्न होंगे. तो 6 कारण उन्होंने अभी तक बताए हैं. तो पहला कारण क्या बताया था, कौन बताएंगे? अपयश, अपकीर्ति, है ना. तो अपयश मिलेगा आपको, अपकीर्ति मिलेगी. दूसरा कारण क्या बताया पिछले 5 हफ्तों में आपने सुना. दूसरा कारण क्या बताया भगवान ने? भगवान ने कहा कि तुम्हारा स्वधर्म है कि तुम क्षत्रिय हो, तो अपने स्वधर्म से तुम सही रूप से उसका निर्णायक नहीं बन पाओगे. स्वधर्म है क्षत्रिय का लड़ाई करना, तो लड़ो, है ना. तो अपने स्वधर्म से जाओगे, अपकीर्ति होगी. तीसरा, अपकीर्ति जो होगी वो कैसी होगी, जिसे तुम पुनः प्राप्त नहीं कर पाओगे, हमेशा के लिए लॉस हो जाने वाली, खत्म हो जाने वाली. चौथा कारण क्या बताया भगवान ने? कहा भय उत्पन्न होगा. भय क्या होगा कि लोग कहेंगे कि ये तो भाग गया, भगोड़ा है. तो इस प्रकार का डर तुम्हें होना चाहिए इस युद्ध से. तो ये भगवान ने उनको समझाया और कहा कि तुम क्षत्रिय होने के नाते अगर अपने स्वधर्म का कार्य नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा. क्या लगेगा? तो स्वधर्म जो है अगर उसे नहीं करते हैं तो पाप लगता है. ये 5 कारण भगवान ने पिछले श्लोकों तक बताए और आज इस 36वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तुम जब इस स्थिति से भाग जाओगे तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे लिए कटु शब्द कहेंगे. कटु समझते ना, बुरे कड़वे शब्दों का प्रयोग करेंगे और कहेंगे तुमने अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य नहीं किया, इसलिए तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास, उपहास मतलब मजाक उड़ाएंगे. तो हमें समझना है इस श्लोक से क्या एक व्यक्ति के लिए सीखने योग्य है कि हम भी एक आत्मा है, हम कोई शरीर नहीं है. जैसे हम जानते हैं 2 प्रकार की समझ है. एक समझ कहती है कि हम शरीर हैं और हमारे अंदर कुछ है जिसे आत्मा कहते हैं, ये एक समझ है. दूसरी समझ है हम आत्मा हैं जो इस शरीर में रहते, है ना. तो अब ये समझने वाली बात है. तो आप लोग क्या समझते, कौन सा सही स्टेटमेंट है? हम क्या हैं? जो शरीर में वास करती है, हम शरीर के अंदर रहने वाले, हम यानी हम शरीर है, हमारे अंदर कुछ है, बोले आत्मा है. कई लोग मिलते हैं, बोले आप कौन है, बोले हम आत्मा है. बोले अच्छा आप आत्मा है, बोले हाँ हम शरीर है और हमारे अंदर कुछ है जो मरने पे निकल जाता है, उसे आत्मा कहते हैं. नहीं, हम आत्मा है जो इस शरीर में वास करती है, ये सही समझ है. तो एक आत्मा का कर्तव्य बनता है जीवेरे स्वरूप होए नितेर कृष्ण दास, सदा भगवान का दास बनना। तो अगर हम ये स्वधर्म का कार्य नहीं करेंगे तो इससे हमें कटु शब्द सुनने पड़ेंगे। और हम देखते हैं हमारे समाज में कितना कुछ कटु शब्द कहे जाते हैं हम लोगों से, और हम उसके लिए बहुत सारा आर्ट ऑफ लिविंग सीखते हैं, पीसफुल माइंड रिट्रीट करते हैं, मेडिटेशन सेंटर्स पे जाते हैं। उसका कारण यही है कि हम स्वधर्म का कार्य नहीं कर रहे हैं, इसी के कारण कटु शब्द सुनने पड़ते हैं। आप एक बार साधु बन जाइए, कौन कटु शब्द कहेगा आपसे? कोई नहीं कहेगा। हो सकता है शुरुआत के फेस में, जब ट्रांजिशन फेस होता है, जब आप एक साधारण मनुष्य साधु बन रहे होते हैं तो लोग आपका उपहास करेंगे, परंतु आप स्वधर्म के अनुसार अगर भक्ति करने लग जाएं तो देखेंगे आप वही लोग जो आपका उपहास कर रहे थे आज आपको पूजने लग गए। और मैंने तो देखा है अपने जीवन में कि जो ये ट्रांजिशन फेस है, जो ये बदलाव की स्थिति है भौतिक से आध्यात्मिक होना, इसके अंदर शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते हैं, है ना, अरे देखो देखो सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली, हाँ तुम भी खूब वैलेंटाइन डे बनाते थे, आज लेक्चर दे रहे हो हमको, ऐसे बोलेंगे लोग। तो उनको बोलना चाहिए भाई सौ चूहे खा के हमारी बिल्ली कम से कम हज को चली, तो तुम्हारी तो वहीं की वहीं खड़ी हुई है, अभी चल भी नहीं रही और हमें बोल रहे हो। ऐसा भाव रखना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि जो लोग मुझसे दृढ़ता से मेरा मुझसे भजन करते हैं उन पर मैं विशेष कृपा करता हूँ। विशेष कृपा है जो दृढ़ व्रत होते हैं। और भगवान, कई बार तो ऐसा देखा गया है कई भक्तों के जीवन में भक्त भजन कर रहे हैं दृढ़ होकर के, और भगवान उनके जीवन में उनके कार्य कर रहे हैं। उनके घर में खाने की कमी है, भगवान खाना पहुंचा रहे हैं, वो भजन कर रहे हैं। लोग बोलते हैं अजी हम भजन करेंगे तो घर में दाल चावल कौन लाएगा? भगवान लाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब तक आप जीवित हैं तब तक तो आप लाते हैं, जब आप इस शरीर को छोड़ देते हैं उसके बाद क्या परिवार के बाकी लोग भी चिता पे बैठ जाते हैं साथ में? सब लोग शमशान घाट में कहते हैं नहीं आज हमारे हेड चले गए अब हम भी नहीं रहेंगे, ऐसा होता है? सब लोग कहां से खाते हैं फिर? भगवान व्यवस्था करता है। छोटे छोटे बच्चे, माँ डिलीवरी दे रही है और एक्सपायर हो गई तो उसे बच्चे को कौन पालता है? और लेकिन जब तक तो जीवित होते हैं बोलते हैं अरे हमारा लल्ला हम नहीं पालेंगे तो कौन पालेगा, ऐसी हमारी सोच है। इसी सोच को बदलने को भक्ति कहते हैं, भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भर हो जाना। जब कुछ गलत हो हमारे जीवन में तो कहना चाहिए हरि इच्छा, क्या बोलना चाहिए? सब लोग जोर से बोलिए, क्या बोलना चाहिए? और जब अच्छा हो हमारे जीवन में तब क्या कहना चाहिए? हरी कृपा, हरी कृपा, भगवान की कृपा हो गई। तो ये दो शब्द जीवन में रख लो, जो कुछ खराब हो हरी इच्छा, मैं कुछ करके आया हूंगा उसके लिए मुझे मिल रहा है, और अच्छा हो तो हरी कृपा, ठाकुर जी मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं फिर भी आपने मुझे जो दिया बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह मजा आ गया, ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा भाव आता नहीं हमारा, हमारी तो डिमांड की लिस्ट ही खत्म नहीं होती है। जो कुछ करते हैं उसके लिए क्या कहते हैं? मैंने किया, और गलत हो जाए तो तेरी इच्छा, हरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा, तूने गड़बड़ किया। तो इस तरह से एक दूसरे को दोषारोपण करते रहते हैं, परंतु उसमें सच्चाई है कि आत्मा तत्व पे हमें जानना चाहिए कि हम सब भगवान के दास हैं। अगर ये समझ जाएंगे कि हम सब आत्मा है तो कौन वैलेंटाइन डे बनाने जाएगा? जाएगा कोई वैलेंटाइन डे? सभी लोग आज देखेंगे कि वैलेंटाइन के अंदर बिजी है, है ना, कुछ ने बना लिया है, कुछ बनाने का इंतजार कर रहे हैं, शाम को जाएंगे पार्टी करेंगे। आप में से कितने लोग हैं वैलेंटाइन बनाना चाहते हैं? सच सच बताइए, मन में कोई है भावना? तो कोई इसका यूज नहीं है वैलेंटाइन का। क्यों? अगर देखा जाए शास्त्रिक दृष्टि से भी तो वैलेंटाइन जो है वो एक संत थे, उनका नाम था सेंट वैलेंटाइन। और वैलेंटाइन जो थे वो कभी जीवन में शादी खुद नहीं किए, कभी किसी स्त्री संग में नहीं फंसे, वो एक ब्रह्मचारी थे। तो वो एक ब्रह्मचारी व्यक्ति थे और उन्होंने समाज में प्रचार कार्य को बढ़ाया कि जो ये प्रेम विवाह है इनको बंद करना चाहिए, और वो इस तरह का प्रचार करते थे वैलेंटाइन। और एक वो प्रीस्ट थे, मतलब मंदिर के अंदर, और उनका नाम था सेंट वैलेंटाइन। और वो व्यक्ति को चौराहे पर मारा गया क्योंकि वो भगवान का प्रचार करता था, कहता था कि भगवान ही महान है और हम सबको एक के प्रति प्रेम भावना रखनी चाहिए, परंतु हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए। इस बात का प्रचार करने के लिए उन्हें मारा गया। जब वो मारे गए तो उनके एक फॉलोअर्स थे जो उनको भी वैलेंटाइन कहते थे, जैसे कहीं एक ही नाम के दो पुरुष होते हैं, है ना, जैसे हरिदास, एक हरिदास ठाकुर है, एक स्वामी हरिदास, तो संप्रदायों में आते हैं सेम नाम के। तो एक बिशप हुए हैं, वो भी वैलेंटाइन नाम के थे, उन्होंने भी सेंट वैलेंटाइन के कार्य को आगे बढ़ाया और कहा कि हमें ये सब पुरुष स्त्री प्रेम और ये जो भौतिक आकर्षण है इससे बचना चाहिए, अपना सारा समय गॉड कॉन्शियसनेस, वो कृष्ण नहीं बोलते थे बट जैसे गॉड कॉन्शियसनेस में लगाना चाहिए, भगवान के प्रेम में लगाना चाहिए, वही जीवन की सच्ची उपलब्धि है, ये सिखाते थे। लोगों ने उनको भी मारा। लेकिन ये कहां से शुरू हुआ कि वैलेंटाइन के दिन एक दूसरे को गुलाब देना चाहिए, ग्रीटिंग कार्ड देना चाहिए, आर्चीज गैलरी जाना चाहिए, ऐसा कुछ था ही नहीं, इट वाज नेवर। तो ये कहां से अराइज हुआ? ये जो स्प्रिंग सीजन आता है, बसंत का, बसंत पंचमी अभी हमने सेलिब्रेट करी, इस बसंत में बहुत सारे पक्षी आपस में विहार करते हैं, पक्षी विहार करते हैं और वो अपने पुत्र या पुत्री संतान उत्पत्ति के लिए इसी मौसम में संग करते हैं, पशु और पक्षी जो होते हैं, बसंत ऋतु बोलते हैं। तो इसके कारण जब पक्षियों को देखते हैं लोग तो बोलते हैं ना, बर्ड्स को देखने से हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं प्योर हो जाती है, ऐसा लोग बोलते हैं। जंगलों में जाते हैं, बर्ड वॉचिंग करते हैं, फोटोग्राफी खींचते हैं, है ना, वाइल्ड लाइफ स्टडी करते हैं। वहां से जो वाइल्ड लाइफ रिसर्च करने वाले लोग थे, वाइल्ड लाइफ रिसर्च वाले, दे स्टार्टेड इट, उन्होंने शुरू कर दिया कि इस समय में अगर पक्षियों को आनंद मिलता है तो अगर हम भी स्त्री संग करेंगे, स्त्री के साथ रहेंगे, स्त्री पुरुष के साथ रहेंगे तो आनंद का अनुभव होगा जैसा पक्षियों को होता है। तो ये किसकी मेंटेलिटी थी? जानवरों की। जानवरों की मेंटेलिटी को इंसान ने अपना लिया और उससे सेलिब्रेशन शुरू कर दिया और नाम क्या रख दिया, उसी दिन आज के दिन दो सेंट मारे गए जिनका नाम था वैलेंटाइन, दोनों को किल किया गया था, मर्डर, प्रचार करने के कारण। मतलब आज आप हमें मार दो और फिर नाम रख दो आज का, कि बोले आज कौन सा दिवस है, बोले आज प्रशांत मुकुंद दिवस है, सेंट वैलेंटाइन वॉज मर्डर्ड टूडे, उसके नाम पर लोग फूल बांट रहे एक दूसरे को, भूल ही गए। किसी चीज की कहां से उत्पत्ति होती है, ये ज्ञान का अभाव है हमारे सोसाइटी के अंदर और ये कभी नहीं आएगा जब तक हम लोग इस गीता के ज्ञान को प्रचार ना करें लोगों को। तो बहुत जरूरी है कि हम स्वयं गीता को पढ़ें, एक आत्मा का कर्तव्य है कि वो भगवान को समझने का प्रयास करें, नहीं तो इसी तरह के कार्य होते रहेंगे। स्वयं वो ही जीसस क्राइस्ट जो कि भगवान का प्रचार कर रहे थे क्रिश्चियन लोगों को ही, और वही कैथोलिक लोगों ने जीसस क्राइस्ट को ही मारा और उनका क्रॉस भी उन्हीं से उठवाया, कहा तुम ही उठा के लाओ, खुद ही गाड़ो, खुद ही चढ़ो, हम सिर्फ कील गाड़ेंगे। इतना दुर्व्यवहार किसी के साथ हो सकता है? तो शिल प्रभुपाद जब विदेश गए तो उनसे पूछा गया, आप क्या समझते हैं कि जीसस क्राइस्ट कौन थे? उन्होंने कहा भगवान के सबसे बड़े वैष्णव थे। जो वैष्णव होता है वो एक भी पल भगवान के कथा प्रचार के बिना रह नहीं सकता है। तो दो प्रकार की वाणी है जिसकी वाणी की चर्चा हम यहां कर रहे हैं। एक है भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कटु शब्द तुम्हें कहे जाएंगे उससे बचो, अपने कार्य को पूरा करो। अगर आप नहीं चाहते कि लोग आपको कटु शब्द कहें तो उसके लिए आज ही भक्ति करनी चाहिए, वरना क्या होगा, कोई बुजुर्ग व्यक्ति वैलेंटाइन बना रहा हो उसे पता ही नहीं गीता क्या है, आत्मा क्या है, तो लोग उस पर हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? आज वो अगर सही समझदार हो तो अपनी दिशा बदल सकता है, वरना लोग कहेंगे देखो ये बूढ़ा होकर भी कैसे कैसे काम कर रहा है। तो कटु शब्द कब सुनने पड़ते हैं? जब हम आत्मा के स्तर पर कार्य नहीं करते हैं। देखो देखो बालों को रंग रहे हैं अपने, जवान बनने चले हैं, बूढ़े जवान बनने चले, ये भावना कब उत्पन्न होती है? डाई करना है, मुझे सुंदर दिखना है, जब हम शरीर के स्तर पर हैं। अगर आत्मा के स्तर पर रहें सब टेंशन फ्री, एकदम आनंद, सच्चित आनंद, आत्मा सदा आनंद का अनुभव करती है, तो ये सब चीजें हैं। तो अगर कटु शब्द सुनने से बचना है अर्जुन को कहा तो तुम युद्ध करो। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें मालूम है अर्जुन कैसे कटु शब्द होते हैं? तो कटु शब्दों के बारे में बताया गया कि जब दुर्योधन और उनके जो कौरव थे उन्होंने पांडवों के साथ में एक जुआ खेला और जुए के अंदर जब वो सब कुछ हार गए क्योंकि शकुनी की चाल थी, उसमें जो डाइस इस्तेमाल किए गए थे वो सारे के सारे नकली थे, उनके अंदर चेंजेस किए गए थे और बाद में उनके हारने पर उन्होंने कहा अब तो तुम अपना सब कुछ हार गए हो, अब क्या दाव पे लगाओगे? तो उन्होंने कहा अब तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो कौरव बोले है ना तुम्हारे पास तुम्हारी सुंदर स्त्री द्रौपदी। तो भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि कैसे कटु शब्द हैं, याद है? दुशासन ने कटु शब्द कहे, दुर्योधन ने कटु शब्द कहे, क्या कटु शब्द कहे? दुशासन ने कहा द्रौपदी से, द्रौपदी चलो तुम्हें राज्यसभा में बुलाया गया है। द्रौपदी ने मना कर दिया, पता है मेरी स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि मैं राज्यसभा में जाऊं, मैं अपने मासिक धर्म से गुजर रही हूं, मैं ऐसी स्थिति में सभा में नहीं प्रवेश कर सकती हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा, और एक वस्त्र धारण करती थी स्त्री, और वो 5 दिनों तक बिल्कुल भी राज्यसभा में जहां पर कुकिंग होती ऐसे स्थानों में नहीं जाएगी। तो जब उन्होंने इस तरह से कहा तो उन्होंने कहा चाहे एक वस्त्र हो चाहे निर्वस्त्र हो तुम्हें अभी चलना पड़ेगा क्योंकि तुम हमारी दासी हो। याद है कैसे कटु शब्द कहे थे, और अभी भी तुम इन पर दया भाव दिखा रहे हो। अपना युद्ध करो, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। तो अर्जुन फिर भी कह रहे ठीक है कहा होगा कोई बात नहीं कृष्ण। तो फिर भगवान उनको और बता रहे कटु शब्द, कैसे कटु शब्द तुमने सुने। तो उन्होंने कहा दुशासन ने इतने बुरी तरह से तुम्हारी पत्नी को व्यवहार किया, और देखो तुम्हारी माता कुंती के साथ में कैसा व्यवहार किया कि तुम सबको अपने घर से बाहर निकाल दिया, है ना। जिस राज्य में तुम रहते थे दोनों का 50-50 बनता था, आधा आधा हिस्सा, लेकिन तुम्हें कहा जाओ वनवास 12 वर्ष के लिए और 1 वर्ष के अज्ञातवास में जाओ, और दिखाई दे गए तो फिर से 12 साल के लिए जाओ, ऐसा तुम्हारे साथ किया। तो ये कटु शब्द तुम भूल गए हो। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग हमसे कटु व्यवहार करते हैं, कटु शब्द कहते हैं, लेकिन फिर भी हमें इस संसार को प्रेम करने की आदत है, हम छोड़ना नहीं चाहते। लोग कहे ना कि अरे छोड़ो ना, क्या जाना आपको रिश्तेदारी में, जप करो अपना। कह रहे जप होना हो, लेकिन हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, रिश्तेदारी में जाना कोई कर्तव्य नहीं है। वो जाते हैं आप, वो आपकी इच्छा है, लेकिन सही मायने में आप वो जा भी सकते हैं। हम ये नहीं कहते आप नहीं जाना चाहिए, परंतु अगर आपने भगवान का भजन नहीं किया तो पहले भजन करिए फिर जाइए, वरना ये कटु शब्द आपको पूरा जीवन सुनने पड़ेंगे। तो और ये जो वाणी है, उपदेशामृत नाम का एक ग्रंथ है जो रूप गोस्वामी ने लिखा है, उसमें वाणी के वेग को कहते हैं कि व्यक्ति कुछ भी कर सकता है लेकिन बोलना नहीं रोक पाता, बैड हैबिट ऑफ स्पीकिंग। तो कई लोग सोचते हैं कि अब मैं ना बुरा बोलूंगा, ना बुरा देखूंगा, ना बुरा सुनूंगा, महात्मा गांधी का बंदर बन के रहूंगा। लेकिन वो बुरा बोलना कभी बंद कर सकता है? क्योंकि ये तो वाणी का वेग है। भगवान ने सृष्टि की रचना ऐसी करी है कि जब बोलेगा तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही निकलेगा। और क्या निकलता है? जो उसके अंदर भावना भरी होती है। किसी से बोलो हरे कृष्णा जी, ठीक है, हाँ जी ठीक है, प्रसाद लेंगे, नहीं लेंगे, आपका दिमाग खराब है, आप गीता नहीं पढ़ते हो, तेरा दिमाग खराब है, उसका तुरंत अंदर से पता चल जाएगा इसका ओरिजिनल क्या है। किसी को चेक करना हो ना, थोड़ा सा उसको पिन पॉपअप करो, पिन लगाओ, बस तुरंत उसका असली नेचर निकल के आएगा। बहुत ज्यादा प्रेम या बहुत ज्यादा गुस्से में आदमी अपना सच्चा रूप दिखा देता है। तो इसलिए हम नकली बनकर रहते हैं, और नकली संसार है, प्लास्टिक स्माइल लेके घूम रहे, जैसे होटल इंडस्ट्री में देखते हैं, सारी होटल्स में जब भी आप जाएंगे तो रिसेप्शन पे जो भी सेवा करने के लिए होते हैं लोग, स्त्री हो या पुरुष, वो प्लास्टिक स्माइल के साथ आपको वेलकम करते हैं। बेचारे सोए नहीं होते पूरी रात, नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, और आप जाएंगे, आप बोलेंगे कोई कमरा है? यस सर, एनीथिंग फॉर यू सर। ये प्लास्टिक खुशी है, और इसी खुशी में संसार घूम रहा है। अंदर से कौन खुश है? 15 मिनट बैठो उसके घर परिवार का, पूछो, रोने लग जाएगा, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई भी खुश नहीं है संसार में पूर्ण रूप में। तो ये प्रॉब्लम है। तो भगवान रूप गोस्वामी कह रहे हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं कि वाचो वेगम, जो है ना ये वाचन का जो वेग है इसको रोकना, कंट्रोल करना चाहिए। कुछ लोग मौन व्रत धारण कर लेते हैं, कहते हैं कि अब हम बोलेंगे नहीं, अब हम मौन धारण करेंगे। तो मुंह पर कपड़ा बांध लेते हैं व्हाइट कलर का, और बोलते हैं कि अब हम कभी किसी से बोलेंगे नहीं। एक मौनी बाबा थे, वो बोले अभी हम कभी किसी से बोलेंगे नहीं, मौन धारण करेंगे। बोले ठीक है बाबा जी, लेकिन भूख लगेगी तो क्या करेंगे? खा लिख करके बता देंगे कि क्या क्या चाहिए। ठीक है। तो जो उनके शिष्य थे वो पूछते थे बाबा कुछ लेंगे खाने में, तो मौनी बाबा को उन लिखते थे अपनी स्लेट और पेंसिल से बोर्ड पे कि मुझे 2 दर्जन केले, 2 चिकन, 1 मटन। ये क्या है? बाबा ने किसी वेग को कंट्रोल किया क्या? आपने कोई बदलाव नहीं है। ये बदलाव तभी आएंगे, बाद में नीचे लिख सकते हैं कि मुझे रात को 1 अल्कोहल का ग्लास भी चाहिए, क्योंकि वो इच्छाएं थोड़ी समाप्त हो रही हैं। तो इस वचन के वेग को कैसे बदलें? चुप रह के तो बदल नहीं सकते। तो एक होता है कटुभाषी, एक होता है मृदुभाषी, लेकिन एक होता है कृष्ण कथाभाषी। ये तीन भाषी हैं। एक है कटुभाषी जो कड़वा बोलता है हमेशा, कोई उससे बात ही नहीं करना चाहता, अरे यार किसका मुंह देख लिया, जब बोलेगा उल्टा ही बोलेगा, कटुभाषी। एक मृदुभाषी, कितना सुंदर बोलता है, कितना सुंदर बोलता है, पर उसके पीछे उसका क्या लालच है पता नहीं होता, है ना, बहुत लालची लोग घूम रहे हैं, तो मृदुभाषी। लेकिन एक है कृष्ण कथाभाषी, जब भी बोलेगा भगवान के बारे में बोलेगा। अगर हम ऐसे बन जाएं तो कटुभाषी और मृदुभाषी का जो भाव है वो समाप्त हो जाता है, और हमारे जो अंदर की इच्छाएं है ना, ये मटन चिकन अनियन गार्लिक चाय कॉफी ये सब समाप्त होती है। कैसे समाप्त होती है? सिर्फ कृष्ण कथाभाषी। लेकिन अब बोलने के लिए पढ़ना भी तो पड़ेगा। बोलेंगे क्या कृष्ण के बारे में जब जानेंगे नहीं? कोई बोले आपसे, जरा बताइए अमिताभ बच्चन की पहली पिक्चर कौन सी थी? कौन सी थी? हाँ कौन सी थी? रुखानी गैंग। तुरंत निकला, बोले साध हिंदुस्तानी। सुना बहुत है ना, इसलिए निकलता है। अब पूछे हैं कृष्ण भगवान के बारे में कौन कौन बोलने को तैयार है, हाथ खड़ा करे, एक एक मिनट कौन बोलेगा, कौन कौन बोलेंगे? वन मिनट, वन कैन स्पीक, पूरा खड़ा करें, आधा आधा नहीं बोलना है। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, कुछ लोग तैयार हैं, बाकी लोग तैयार नहीं कृष्ण के बारे में बोलने के लिए। बोले जी एक मिनट नहीं बोल पा रहे, जिसके बारे में, जिस पर पूरी हमारी जिंदगी निर्भर है, उसके बारे में एक मिनट बोल नहीं पा रहे। और अगर बोलेंगे ना तो देखेंगे, अरे यार मेरा वाला पॉइंट तूने बोल दिया, मैं क्या बोलूंगा, हाँ भाई तूने मेरा वाला पॉइंट बोल दिया। प्रॉब्लम इज दिस कि वी डोंट रीड, हम पढ़ नहीं रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। अगर हम पढ़ने लग जाएं गीता को, तो गीता में ऐसा है कि 700 श्लोक पर 7 जन्मों तक भी बोलेंगे तो कम पड़ जाएगा, इतना कुछ है इसके अंदर, भगवद गीता के अंदर ही है ना। अभी तो हम कितने श्लोक किए हैं, दूसरे चैप्टर का 36वें श्लोक पे पहुंचे हैं, और 2 साल के करीब होने आ रहे हैं गीता कोर्स को चलते हुए। सोचिए आप, सिर्फ अभी 2 चैप्टर भी पूर्ण नहीं हुए, 18 चैप्टर होते होते तो हमारे भी सफेद हो जाएंगे और कोई आपके भी बाल सफेद हो जाएंगे। ये इतना कुछ है इसके अंदर ज्ञान सीखने के लिए। तो ये कटु शब्दों को छोड़ना है, मृदु शब्दों को भी छोड़ना है, क्या बोलना है? कृष्ण कथावासी। कृष्ण कथावासी बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो हमें अपने वचनों को बदलना चाहिए। और इसमें भगवान बता रहे हैं 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में, भगवान बहुत सुंदर तरीके से हमारे वाणी के वेग के बारे में कहते हैं। भगवान बोल रहे हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यासानम चैव वाक्मयम तपः उच्यते। भगवान ने कहा जो वाणी की तपस्या करते हैं, मतलब अपनी वाणी से जब भी बोलेंगे कृष्ण के बारे में बोलेंगे, तो ऐसे व्यक्ति 4 प्रकार के होते हैं। पहला, जो कि सच्चे होते हैं ना लोग, वो भाने वाले, मतलब जब वो दूसरों को क्या होंगे, भाने वाले होंगे, प्रसन्न करने वाले। तीसरा, हितकर होंगे, दूसरों के हितैषी होंगे। और चौथा, अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना। ऐसे वाक्य कभी नहीं बोलेंगे जो अन्यों को परेशान करें। तो ये कब होगा? मौन व्रत धारण करने से। कृष्ण भाषा, जब हम खाली सोचें कि टेलीविजन में मैं अच्छी फिल्म देख लूं या किसी के अच्छे वचन सुन लूं, उससे नहीं। जब तक कृष्ण के बारे में नहीं पढ़ेंगे कोई बदलाव आने वाला नहीं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बिकॉज यहाँ पे इस्कॉन में आने से पहले जब कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत लीडरशिप प्रोग्राम अटेंड किए, हाउ टू स्पीक गुड, हाउ टू कम्युनिकेट वेल, इट हार्डली मैटर्स, कोई बदलाव ही नहीं आता है। अगर सच्चा बदलाव आता है व्हेन यू रीड भगवद गीता, जब आप पहले दिन भगवद गीता पढ़ना प्रारंभ करेंगे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। खाली आप इंट्रोडक्शन पढ़िए, आपका जीवन में बदलाव आना प्रारंभ होगा। तो भगवान ने कहा वाणी का वेग तपस्या करने से 4 प्रकार के गुण हम में उत्पन्न हो जाते हैं। तो भगवान ने इसमें 2 प्रकार के शब्द कहे अर्जुन को। पहला कहा, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे। और दूसरा कहा, तुम्हारी सामर्थ का उपहास करेंगे। तो उपहास कहते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि अर्जुन, शकुनी का पुत्र जो था, शकुनी का पुत्र था एक, क्या नाम था उसका? उलूक। उलूक संदेश लेके आया, याद आया, अभी याद आया इनको। उलूक नाम का एक संदेश दूत था जो कि शकुनी का पुत्र था, उसको भेजा गया दुर्योधन के पास में कि जाओ दुर्योधन से पूछ के आओ, सब कुछ फाइनल हो गया, हमने 12 वर्ष गुजार लिए वनवास में, एक साल अज्ञातवास में विराट राजा के घर में भी रहे, तो अब जाकर के पूछ के आओ कि अब युद्ध करना है या वो हमसे हमारी इस ऑस्टेरिटी से प्रसन्न हो गया। तो जो शकुनी के पुत्र को भेजा गया तो उलूक जब पहुंचे, दुर्योधन ने बहुत कटु शब्द कहे फिर से, और आकर के वही उपहास मजाक उन्होंने एज इट इज सुनाया। जो दूत होते थे वो ईमेल की तरह एज इट इज सुना देते थे कि ये बोला है, और बड़े ज्ञानी होते थे, सब कुछ याद रखते थे, लिखते भी नहीं थे, एज इट इज ट्रांसफर कर देते थे। उलूक ने आकर के कहा, सारी पांडव सभा बैठ गई, कृष्ण भगवान बैठ गए, तो उसने सबसे पहले वचन कहे भगवान कृष्ण के लिए, कहा दुर्योधन ने कहा है कि पांडव लड़ने को तैयार क्यों नहीं होते हैं, जो कि संदेश वाहक भेजा है, शांति दूत भेजा है अपना, मैं कोई शांति नहीं चाहता हूं, और एक कृष्ण को लेकर के जो कि ग्वाला है, जो कि कंस की नगरी में जिसके पिता सारा दिन दही माखन का ऋण चुकाते थे, ऐसा व्यक्ति को लेकर वो अगर अर्जुन सोचता है कि युद्ध में विजयी होगा तो ये उसकी भूल है। और कहा गांडीवधारी है ना, बहुत बड़े गांडीव का घमंड है अर्जुन को, अरे जब मैं अपने अस्त्रों का प्रयोग करूंगा तो सैकड़ों कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन भागते नजर आएंगे। ये दुर्योधन ने शब्द इस्तेमाल, कितनी बड़ा अहंकार में भरा हुआ था, भगवान के लिए ऐसा बोल रहा है। तो ऐसे लोग आज भी हैं, अजी आपकी कृष्ण क्या हमारे बच्चे के एग्जाम में 100% दिलवा देंगे? बोले जी हाँ दिलवा देंगे। अब बच्चा प्रयास ही नहीं किया, पढ़ना बंद कर दिया, और पहले उसका डब्बा गोल था, 37% आते थे, तो भगवान की कृपा से 40 आ गए अगर, तो बोलेंगे बस आ गए 40, देख लिया आपके भगवान, कोई भगवान भगवान नहीं होता। ये सारे लोग कौन बोलते हैं, जिनका दुर्योधन का जैसा स्वभाव है, और भगवान को सामने सामने देखकर नहीं समझ पाए तो हम कैसे समझ पाएंगे, बहुत मुश्किल है। इसको समझने के लिए आदो श्रद्धा तथा साधु संग, साधु संग बाद की बात है, पहली श्रद्धा की आवश्यकता है, फेथ इज रिक्वायर्ड। आप देखिए, आप जाते हैं सर को बाल कटवाने के लिए, जाते ना नाई के पास जाते हैं, वहां पे गर्दन नीचे करके बैठ जाते हैं, अगर वो आपकी पॉकेट काट ले, गर्दन काट ले, कभी पूछते हैं कि भाई गर्दन तो नहीं काटेगा, बाल ही काटने को बैठे हैं हम, पूछते हैं कभी आप एनीबडी? मेट्रो ट्रेन में चढ़ते हैं, कभी ड्राइवर से पूछते हैं कि भैया अपना लाइसेंस दिखाओ, आप कब कितने साल से आप मेट्रो चला रहे हो, बीच में आपने ऐसा ब्रेक लगाया मेरा मुंह टूट गया तो? ऑटो ड्राइवर ऑटो बैठ जाते हैं, ऑटो ड्राइवर से पूछते हैं कि भाई ऐसा कोई हमें अपना लाइसेंस दिखाओ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाओ, कितने दिन से दिल्ली में आप चला रहे हो, कितने चालान आपके कटे हैं, पूछते हैं, बैठ जाते हैं। रेडियो टैक्सी करते हैं, बैठ जाते हैं, क्यों, ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, फेथ। बट जब ये रिलीजन की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो एक प्रमाणिक ग्रंथ भगवद गीता, उसके ऊपर हजारों डाउट है हमारे, ऐसा थोड़ी है, हमारे गुरु जी कहते हैं, महाराज जी ने तो ये बताया था, पंडित जी तो ऐसा कहते थे, सब फालतू। गीता खोलो, पढ़ो, अपने आप जान लो, और इस क्लास में आओ, डाउट हो तो क्लियर कर लो, गारंटीड है आपके जीवन में बदलाव आएगा ही आएगा, और बहुतों के आया है, मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोगों ने अपने जीवन को बदला है इस गीता प्रमाणिक श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा रचित, इसको पढ़कर अपना जीवन बदला है। आप भी प्रभुपाद के तात्पर्यों का क्या करिए, फायदा उठाइए, वरना ऐसे ही उपहास होता रहेगा जीवन में, कभी किसी ने कुछ कह दिया फिर मन शुभ्ध हो गया, फिर एक पिक्चर देख ली फिर खुश हो गए, फिर मंडे को किसी ने कुछ कह दिया फिर दुखी हो गए, फ्राइडे फिर पिक्चर रिलीज हो गई फिर खुश हो गए, ऐसे ही जीवन चलता रहेगा पेंडुलम के जैसा, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, लेकिन आनंद का कोई अनुभव नहीं होगा आपको। आनंद चाहिए तो गीता पढ़नी पड़ेगी, और गीता पढ़ने पर भगवान कहते हैं कि मेरा नाम जप करना पड़ेगा, सब कुछ त्याग कर आपको मेरी शरण में आना पड़ेगा, नाम एकम शरणम, मेरे नाम की शरण में आना पड़ेगा, माम एकम मतलब मेरे एक की शरण में आना पड़ेगा। तो भगवान का नाम लेके आप जिएंगे तो आपका जीवन बहुत ही मंगलकारी होगा। मंगलवार को बूंदी चढ़ाने से मंगल नहीं होता है, हनुमान जी कहते हैं मैं सारा दिन जप करता हूं, तो मुझसे इतनी भी शिक्षा नहीं लेते हो कि भगवान के नाम का जप करो, अगर मेरे जैसे एज इट इज बनना चाहते हो। अभी शिवरात्रि आएगी 25 तारीख को, लोग शिव जी को कॉपी करेंगे, हाँ 24 को नहीं, हमारे वैष्णवों में 25 की है, वैसे संसार 24 की बना रहा है, जो भी है वॉट एवर 24-25, पर लोग कॉपी करेंगे शिव जी को, क्या पियेंगे उस दिन, क्यों, शिव जी भांग पीते थे, बोले नहीं शिव जी ने जहर पिया तो तुम भी जहर पियो, कॉपी करना है तो पूरा करो, वह भगवान कृष्ण की रासलीला हम कॉपी करेंगे। भगवान ने 16108 के साथ रास किया, तुम 3-4 को लेके वैलेंटाइन डे बना के खुश हो जाते हो। अगर पूरा करना है तो भगवान ने गोवर्धन उठाया, आप भी उठाओ। कॉपी करना है तो पूरा करो, और आप कर नहीं सकते हैं। और शिवजी कभी जहर पिए तो किसके कहने पर पिए? भगवान के कहने पर। क्या भगवान ने कहा भांग पियो? फिर भी लोग पी रहे हैं। और अभी तो एक फोटोग्राफ बना देते हैं, शिवजी का टैटू भी बनवाते हैं लोग, शिवजी चिलम पी रहे हैं। शिवजी कभी चिलम पीते हैं क्या? अगर शिवजी को कॉपी करना है तो वो करिए। शिवजी कहते हैं अपनी पत्नी पार्वती से पद्म पुराण में, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना नाम परम तस्मात पर तरम देवी तदया नाम समर्चनम। वो कहते हैं संसार में अगर पूजने योग्य है तो सिर्फ कृष्ण है। कौन कह रहे हैं? शिवजी कह रहे हैं। और आप उनको कॉपी करके शिवरात्रि बना रहे हैं पर कृष्ण का भजन नहीं कर रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। उपहास होगा आपका, बुरा मत मानिए। तो शिवजी क्या कह रहे हैं कि देखो इस संसार में आराधना करने योग्य हैं तो सिर्फ एक ही हैं, भगवान कृष्ण। और उनसे भी बढ़कर आराधना करने योग्य हैं तदिया नाम समर्चनम, उनसे जुड़ी हुई वस्तुएं जैसे उनका नाम, उनका धाम, उनका प्रसाद और उनके भक्त। उनका अगर आप भजन करेंगे तो आपके जीवन में सबसे बड़ी आराधना आप करेंगे। कॉपी करना है तो करिए प्रॉपरली। उसके बाद उलूक ने आकर कहा कि अर्जुन के बारे में भी बोला है। अच्छा, अर्जुन ने कहा क्या बोला? कहा अर्जुन के लिए कहा है कि विराट राजा के घर में ब्रहन लाला नाम की एक स्त्री बनकर तुमने क्या किया, नृत्यकी का रूप धारण किया और नाचे। इतना बड़े गांडीव को लेकर के तुम्हें छुपना पड़ा, और तुम्हें बड़ा कष्ट होता था कि एक बार मौका मिले तो मैं अपने गांडीव से दुर्योधन को बताऊं, और अब जब मौका मिला है तो छुप करके बैठे हो। क्या ब्रहन लाला की आदत तुम्हें ज्यादा अच्छी लगी? मतलब पाँव में पायल और हाथ में चूड़ी पहनना ज्यादा अच्छा लगा? ऐसा कहा अर्जुन के लिए। आते क्यों नहीं हो युद्ध करने के लिए? अब कोई शांति का सुझाव नहीं, सिर्फ आक्रमण, युद्ध होगा। युधिष्ठिर के लिए कहा बड़े सत्यवादी बनते हैं, 4 वेद पढ़ने से सत्यवादी नहीं होते हैं। जिसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो उसको तो युद्ध करना ही चाहिए। ऐसा कैसा क्षत्रिय है जो शांति का प्रस्ताव भेज रहा है? सोचिए, ये संसार के लोग हैं, लड़ने के लिए तैयार है। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं वैष्णव और एक होते हैं भौतिक। भौतिक लोग पहले लड़ते हैं बाद में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वैष्णव लोग पहले कॉम्प्रोमाइज करते हैं बाद में लड़ना है तो लड़ लेते हैं। तो अर्जुन वैष्णव थे, विष्णु भगवान के, कृष्ण भगवान के भक्त थे, युधिष्ठिर भक्त थे, इसलिए उन्होंने पहले प्रस्ताव भेजा। कभी आप देखिएगा जीवन में, आपके अनुभव हुआ होगा, कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए अगर थोड़ा बहुत, तो सामने वाला लड़ने को तैयार होता है, मर्डर करने को तैयार होता है, इतना गुस्सा होता है। और मान लो मर्डर कर भी दिया, इसने इसके गांव के लोगों को मार दिया, उसने उसके गांव के लोगों को मार दिया, तुमने मेरे चाचा मारा, मैंने तुम्हारे ताऊजी को मारा, तुमने मेरी बहन को मारा, मैंने तुम्हारी बुआ को मारा, ये लड़ाई चलती रहती है। कभी कोर्ट जाके देखे ना आप, तो सिविल कोर्ट के अंदर आप पता चलेगा कि पर दादा ने केस शुरू किया था, अभी तक चल रहा है। बोले हर बार कोई ना कोई इधर उधर का पार्टी खत्म होती है तो केस कंटिन्यू हो रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। बोले आप क्या चाहते हो? बोले अब हम तो प्रयास कर रहे हैं 4 पुश्त निकल गए लड़ते लड़ते, कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ए बेवकूफ, पहले ही कर लेते कॉम्प्रोमाइज। तो वैष्णव क्या करता है, अगर कुछ हो भी जाए तो बोलता है हरी इच्छा, भैया ठीक है हो गया, माफ करो, क्षमा करो, खत्म करो। यही बोल रहे हैं युधिष्ठिर के, चलो जो होना था हो गया, खत्म करो। लेकिन सामने वाला भौतिक है, वो क्या कह रहा है, मैं तो मारूंगा, लड़ने को आओ। क्योंकि वो जानता नहीं था कि उनके पास कौन थे, कृष्ण। भगवान को बड़ी हंसी आती है, और उस समय भी भगवान को बड़ी हंसी आ रही थी, हे पागल, मुझे ग्वाला कह रहा है, जानता नहीं है मैं ब्रह्मांड नायक हूं। मेरा नाम जपने मात्र से हर एक इच्छा पूरी हो सकती है, हर इच्छा। नाम चिंता मणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत नाम नामिना। भगवान का नाम चिंतामणि है, जो भी आपके मन में आएगा ना वो पूर्ण कर देती है। अगर आप जप करते वक्त बोलेंगे मुझे पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, हरे कृष्णा पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, हरे कृष्ण, आपको इतना पैसा मिलेगा आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। सच बता रहे हैं, चिंतामणि है ये। लेकिन भगवान की भक्ति कभी नहीं मिलेगी। और इसी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में आओ, बार बार मरो, फिर पैदा हो, फिर मरो। एक बार बने डॉक्टर, फिर अपना शरीर छोड़ा, फिर से ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल फिर सीखो, फिर से बड़े हुए, इस बार इंजीनियर बन गए, फिर मर गए, फिर दोबारा से माँ के गर्भ में आए, फिर से डिलीवरी हुई, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, इस बार लॉयर बन गए, फिर मर गए, फिर आए, फिर से माता के गर्भ में, फिर डिलीवरी हुई, फिर ए फॉर, मतलब ये पुनरपि जननम, बार बार जन्म, पुनरपि मरणम, बार बार मरना, पुनरपि जठरी, ये जो जठरी है माँ की गर्भ में, इसमें बार बार आना पड़ेगा। शंकराचार्य कह रहे हैं अगर चाहते हो तो क्या करो, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूर्ख व्यक्ति, भगवान गोविंद का भजन क्यों नहीं करता? कौन कह रहे हैं? शंकराचार्य, सोचिए आप। और आज शंकराचार्य के फॉलोअर्स भजन ही नहीं करते भगवान का। फॉलोअर्स आर एक्चुअली नॉट फॉलोइंग द पाथ। शिष्य वही है जो गुरु के बताए रास्ते पर चले। श्रील प्रभुपाद जी ने हमको रास्ता दिखाया कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और अपने जीवन को पूर्ण बनाओ, अपनी वाणी को कृष्ण कथा भाषी बनाओ, डर को अपने जीवन से निकाल दो, क्योंकि हमें सबसे बड़ा डर होता है मरने का, है ना? सबसे बड़ा डर है फियर ऑफ डाइंग, डरता है आदमी मरने से। अरे अरे बिजली को हाथ मत लगाना, क्या हुआ, मर जाएंगे। ट्रैफिक है, ट्रैफिक है, बच्चे को रोड पे अकेला मत भेजो, क्यों, और मर सकता है, अकेला मत भेजो, कुछ भी हो सकता है, डर है। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग हुई थी उसी दिन एक्सपायरी डेट लिख दी थी, डोंट फियर, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम केयर ना करें, अपनी केयर करें परंतु डरे नहीं। और डरना तो तब होता है जब कोई व्यक्ति पैदा हो तो मरता है। आत्मा का जन्म होता है कोई, मृत्यु होती है कोई, किसकी मृत्यु होती है, शरीर की, तो चला जाएगा, ठीक है। पुराना वाला फोन टूट गया, सिम कार्ड निकाला, नए फोन में डाल लिया, एंजॉय लाइफ, जियो लाइफ, है ना, जियो लाइफ, जियो सिम आ गया। तो इस तरह से अपने सिम कार्ड को इधर से उधर निकाल के आत्मा ट्रांसफर करती है। वासाम से जीर्णानि यथा विहाय, शरीर से आत्मा निकलकर पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करती है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, जब तक आप चिंताग्रस्त रहेंगे परेशान रहेंगे, है ना। तो आज जितने भी लोग ये वैलेंटाइन बना रहे हैं, कुछ लोग प्रेम दिए बना रहे हैं, कुछ लोग डर के बना रहे हैं, बोले नहीं बनाया तो पत्नी मुझे इतना कुछ सुनाएगी, मेरा उपहास होगा, ये उपहास होता रहेगा। एक व्यक्ति तो बता रहा था, बोला पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी हमारा प्रेम विवाह हुआ है, वो बहुत अच्छी बात है। कहा हम लोग सारे डे बनाते थे, चॉकलेट डे, रोज डे, फ्लावर डे, फ्रेंड्स डे, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे, सारे डे बनाते थे। मैंने कहा फिर अभी, कह रहा जब से विवाह हुआ है सारे डे बंद हो गए। मैंने कहा अच्छा आप क्या बनाते हैं? कह रहा अब मैं बोलता रहता हूँ खाना दे, चाय दे, सोने दे, और आखिरी में बोलता हूँ मुझे भी बोलने दे। तो यही सारा चलता है, ये भय जीवन से जाएगा नहीं। स्वधर्म है आत्मा का कि भगवान का भजन करे, और भजन में आनंद है, बहुत आनंद है। अब देखिए अगर आनंद नहीं होता, आकर्षण नहीं होता, तो आप हर मंगलवार को क्यों आते हैं? कुछ ना कुछ तो है, लेकिन हाँ उसको पूर्ण रूप से पालन करने की दृढ़ता नहीं है हमारे अंदर, इसलिए हमें ये अच्छा भी लगता है पर इसे पालन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो बीच का डर है इसको समाप्त करिए, है ना। भगवान कहते हैं कि जो डर गया वो नहीं मरेगा, नहीं मरता तो कोई भी नहीं, तो गब्बर बोलता है डर गया वो मरे। भगवान कहते हैं डरो मत, जो डर गया वो मेरी शरण में आ जाए बस, भगवान ये कहते हैं, है ना। सर्वधर्मान परित्याजम मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। का मतलब है डरो मत। भगवान की एक विग्रह है वो साउथ इंडिया में, वो विग्रह के अंदर भगवान ने अपने हाथ को ऐसे रखा है और एक हाथ को नीचे की तरफ दिखाया है, तो भगवान का विष्णु रूप है। उसमें भगवान क्या दिखा रहे हैं, नीचे लिखा है कि सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, और ऊपर यहाँ पर हाथ में लिखा है माँ शुचः, वरद राज कृष्ण है, कांचीपुरम स्थान है, वहाँ की साड़ियाँ बड़ी मशहूर है, माता लोग जानती हैं कांचीपुरम, है ना। तो कांचीपुरम में वरद राज कृष्ण है, उनके हाथ पे लिखा है माँ शुचः। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे एक हाथ में माँ शुचः, डरो मत, और एक हाथ को नीचे किया अपने पैरों की तरफ कि अगर डर लगता है तो क्या करो, मेरे शरण में आओ। मेरी शरण में आने के बाद संसार के सारे डर समाप्त हो जाते हैं। तो आप भी अपने डरों को समाप्त करिए, जैसे अर्जुन डर रहे हैं कि अगर मैंने अपने परिजनों को मारा तो क्या होगा, बड़ी दया भाव दिखा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं दया की आवश्यकता नहीं है, अर्जुन तुम नहीं मारोगे तो कोई ना कोई तो मारेगा, और कोई नहीं मारेगा तो ये अपनी स्वतः मृत्यु तो मरने ही वाले हैं। लेकिन अगर तुम नहीं करोगे, तुम्हें ये छह कारण तुम्हें जीवन भर रहने नहीं देंगे, जिंदा नहीं रहने देंगे। तुम्हारी अपकीर्ति होगी, तुम्हारा उपहास होगा, तुम्हें भगोड़ा कहा जाएगा, तुम्हें पाप लगेगा। ये सारे छह कारण भगवान ने भगवद गीता के 30वें श्लोक से लेकर 36वें श्लोक तक बताए। उसके आगे की चर्चा हम अगले हफ्ते करेंगे। हरे कृष्णा।